भारत के प्राचीन योग का रहस्य, सुषुप्त शक्तियां जगाने का रहस्य, सशक्त मन बनाने का रहस्य, विधि से सिद्धि पाने का रहस्य, अपने सत्य चेतन स्वरूप का रहस्य, ईश्वर और प्रकृति से संबंध का रहस्य, स्वस्थ तन मन पाने का रहस्य, सदियों का ज्ञान और अनुभव, योग रहस्य।
नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका योग रहस्य में। भाई और बहनों, योग रहस्य के माध्यम से हम योग के विलक्षण और विशाल ज्ञान को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात तो हमें इस यात्रा में समझ आ गई है कि योग में हमारे सारे समाधान छुपे हैं। जीवन में जो हमारे क्वेश्चन मार्क होते हैं, योग के साथ जुड़ते ही वो फुल स्टॉप में बदल जाते हैं, और जीवन के खाली खाने जो हैं वो फुल स्टॉक में बदल जाते हैं। ऐसा हमें भरपूर योग कर देता है। सत्य पहचान आते ही हमें पता चल जाता है कि हम कितने संपूर्ण हैं, और जो रचयिता है उसकी तरह ही हम परिपूर्ण हैं। ऐसी है योग की अद्भुत जो प्रतिभा है, विधि है। तो आइए हम इस योग की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मैं परिचय करवाता हूं आपका आज के मेहमानों से, और जानते हैं कुछ और रहस्यों को आज की इस कड़ी में। स्वागत करते हैं हम राजयोगिनी उषा दीदी जी का, स्वागत है डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है, और दिल्ली से पधारे हमारे दिनेश शर्मा जी का जो कि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जो कि योग के विशेषज्ञ हैं, इंस्ट्रक्टर हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं दीदी जी से पूछना चाहूंगा कि कई लोग कहते हैं कि योग करते समय माइंड पूरा ब्लैंक होना चाहिए, एक भी विचार नहीं चलना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पूरा सरेंडर कर देना होता है, जो होता जाए वो होता जाए। आप बताइए कि योग की सही विधि क्या है, इसको किस तरह से करना चाहिए।
देखो, योग के अंदर माइंड को ब्लैंक नहीं करना है सबसे पहली बात, क्योंकि हाँ, एक होता है जैसे साइलेंस में जरूर ले जाते हैं, लेकिन जैसे ब्लैंक कर देना माना डेड साइलेंस
जी,
हम डेड साइलेंस में नहीं जाते हैं, स्वीट साइलेंस में जाते हैं। विचारों की गति बहुत हल्की चलती रहे
जी,
लेकिन पावरफुल हो,
एक दिशा हो उसमें।
एक दिशा हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण अगर दूं कि भाई एक नदी बह रही है ना, अब कोई व्यक्ति आकर सोचे इतना पानी वेस्ट जा रहा है, क्यों नहीं ये पानी को रोक दिया जाए, और उसने एक दीवार खड़ी कर दी रोकने के लिए, पानी रुक गया। लेकिन एक समय आएगा कि पानी की शक्ति दीवार की शक्ति से बढ़ करके उसको तोड़ करके और ही नुकसान कर देंगे।
बिल्कुल।
लेकिन एक इंजीनियर अगर आता है और वो भी देखता है कि इतना पानी है और वेस्ट जा रहा है, क्यों नहीं यहां डैम बनाया जाए, और जब वो डैम बनाता है और फिर वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन खड़ा कर देता है ताकि वो एक्सेस पानी जो है उस पर गिरकर टरबाइन चलती रहे, कितने एकड़ जमीन को बिजली मिलती रहे, और अगर एक्सेस भी हो जाए तो गेट्स कुछ खुल जाए और कनाल्स बना दिया जाए, तो उन कनाल्स के द्वारा लाखों एकड़ जमीन को पानी मिलता है
जी।
तो वो पानी की शक्ति का संपूर्ण सदुपयोग हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारे मन की एक ऊर्जा है,
और ये बहने के लिए है,
जो बहती है
स्वाभाविक रूप से, कुदरत ने इसे बहने के लिए बनाया है।
बिल्कुल। और ये मन के जो विचारों की शक्ति है ये भी कांस्टेंट बहती है
जी।
अगर हम सोचे कि भाई इतनी ऊर्जा वेस्ट जा रही है नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स में, और व्यक्ति ने सोचा इसको मैं ब्लैंक कर दूं, बिल्कुल सोचूं नहीं, तो उससे होगा क्या कि कुछ क्षण तक वो रुक जाएगा लेकिन और भी नुकसान कर देगा
जी।
लेकिन इसी विचार की ऊर्जा को हम अगर चैनलाइज कर देते हैं
जी,
एक दिशा दे देते हैं, सकारात्मक दिशा देते हैं, तो क्या होता है कि उसी ऊर्जा को हम उसका सदुपयोग करते हुए हम आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं, अपनी मन की स्थिति को प्रसन्नचित रखते हैं, प्रफुल्लित रख सकते।
तो ये भी इनर इंजीनियरिंग हुई
जी,
सारी
जी।
डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या मेडिकली ये संभव है कि आप अपने मन को ब्लैंक कर दें, कुछ विचार ही ना चले, या इसको मेडिकल किस तरह से देखती है आज की मेडिकल साइंस, और आप अपने अनुभव से बताइए कि इसको सही दिशा कैसे दी जाए, कैसे हम इसका पूरी तरह से सदुपयोग कर सकते हैं।
सी, अगर हम साइंस की भाषा में कहें तो जैसे हम हार्ट का ECG करते हैं ना
जी,
ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करते हैं, ऐसे हम ब्रेन का EEG कर सकते हैं। तो ब्रेन में रिदम होती है, जैसे नॉर्मली हम जब आंख खोल के बैठे तो हमारी बीटा रिदम होती है, 13 से 18 बार ब्रेन ऐसे करता है एक सेकंड में।
ओके,
13 से 18 बार एक सेकंड, मतलब इसको कोशिश किया लोगों ने, साइंटिस्ट ने, कोरिलेट करने की थॉट से। तो अगर हमारे 13 से 18 एक सेकंड में ब्रेन वेव बीटा रिदम है, तो थॉट्स भी हमारे लगभग इतने ही एक मिनट में होते हैं, 13 से 18 समझो, एवरेज 15 थॉट्स एक मिनट में होते हैं। और अगर हम चिंता करते हैं तो थॉट्स की स्पीड बढ़ जाती है, मतलब और ज्यादा बढ़ जाएंगे, 18 से 25 थॉट हो जाएंगे, और ज्यादा कुछ डर लगता है, इरिटेट होते हैं, और थॉट्स बढ़ जाए, और ब्रेन की रिदम बीटा प्लस और सुपर बीटा में जाती है। ऐसी स्टडी हमने भी की थी DRDO के साथ मिलकर।
ओके,
हमने इफेक्ट देखा था थॉट्स का, नेगेटिव थॉट्स का और पॉजिटिव थॉट्स का। तो हमने देखा कि उनके ब्रेन की रिदम बढ़ गई, 25 हो गई, 30 हो गई, 35 हो गई, 40 हो गई, थॉट्स की स्पीड बढ़ती चली गई और उनकी ब्रेन की रिदम बढ़ती चली गई।
तो जैसे ये ब्रेन की रिदम बढ़ती है तो उस समय व्यक्ति कमजोर महसूस करता है या शक्तिशाली महसूस करता है?
कमजोर, कमजोर, चिंता, कमजोर, चिंता, थकावट, डर लगेगा उसको, थकावट हो जैसे दर्द हो जाएगा, भारीपन लगेगा, गुस्सा, है ना, ये नेगेटिव, सारी नेगेटिव टेंडेंसीज आती हैं।
और अगर बिल्कुल सीधी लकीर आ जाए तो उसका क्या
मतलब?
मतलब
शरीर छोड़ दिया, आत्मा शरीर से बाहर निकल गई।
तो मतलब संभव ही नहीं है कि मन को, दिमाग को पूरा ब्लैंक किया जाए।
उस पे मैं आता हूँ, उस पे भी आता हूँ, जैसे पॉसिबल योगी लोग पहले कैसे करते थे
जी।
और इसकी बजाय अगर हम, जैसे हम बीटा रिदम पे हैं, अगर हम आंखें बंद कर लेते तो हमारी रिदम शांत करते ना मन को, तो हमारी अल्फा रिदम हो जाती है, उसको हम 8 से 12 कहते हैं, एक सेकंड में 8 से 12,
एक सेकंड या एक मिनट,
एक सेकंड में 8 से 12 बार ब्रेन की रिदम ऐसे होती है,
एक सेकंड में
ब्रेन रिदम ऐसे होती है, वो थॉट्स मिनट में होते हैं, सेम नंबर ऑफ थॉट्स। और अगर हम थोड़ा सा और रिलैक्स हो जाएं तो वो थीटा रिदम हो जाती है, 4 to 7, और डेल्टा रिदम गहरी नींद में, बहुत गहरी नींद में होती है। तो इसकी बजाय अगर हम इसको साइंस के हिसाब से, इसके हिसाब से कोरिलेट करें मेडिटेशन के हिसाब से, जो हमने खुद रिसर्च करके देखा, हमने लोगों को कहा बीटा रिदम पे कि आप अपने मन में ये रियलाइज करो कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान, इसको रियलाइज करो, अनुभव करो कि मैं आत्मा हूं, यहां बैठी हूं, सारे शरीर को चला रही हूं, परमात्मा की संतान हूं, परमात्मा से एक संबंध की अनुभूति करो, एनर्जी के अंदर, अपने अंदर प्रभाव महसूस करो। तो उनकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी जो 15 थी या 18 थी, वो कम होते 10 हो गई, 8 हो गई, मतलब अल्फा में आ गए, थीटा में आ गए, डेल्टा में पहुंच गए
जी।
मतलब थॉट स्पीड उनकी जो थी ना 15, 20, 30 थी, वो फ्रीक्वेंसी कम होके 3-4 पहुंच गए, 3-4 पहुंच गए, और 3-4 पे वो आनंद का अनुभव कर रहे थे। तो हमने ये कोरिलेट किया, इस पे आज कुछ और रिसर्च भी हुई है कि हम अल्फा रिदम को कहते हैं शांति की रिदम, पीसफुल रिदम, और थीटा रिदम को कहते हैं लवफुल रिदम, और डेल्टा रिदम को कहते हैं हैप्पी एंड ब्लिसफुल रिदम, राइट?
तो इसका हमारी एक एक शक्ति से भी संबंध है इस रिदम,
और इससे हम जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाएंगे हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी
जी।
पर जीरो माना डेथ, राइट? जीरो माना डेथ। अब जो थॉट की बात हम कर रहे हैं कि थॉट चलने बंद हो जाए, थॉट चलना मतलब जीरो थॉट तो हो ही नहीं सकता, वो तो डेथ के बाद, मतलब डेथ हो गई। हाँ, एक थॉट में ऐसे लगता है हमें थॉट स्टिल हो गए, एक थॉट मतलब एक्सट्रीम स्टेज है, आनंद की स्टेज है। किंतु कुछ लोग जैसे जो हमारे हठ योगी जो ऐसे होते हैं हमारे जो दुनिया में जैसे करते हैं कुछ लोग, ये देखने में, इस पर भी रिसर्च हुई है कि हम पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन दे देते हैं, शुगर लेवल एकदम लो कर देते हैं उसका, मतलब शुगर लेवल 40 कर दिया है ना, 40 कर देते हैं, 50 कर देते हैं
जी।
तो शुगर लेवल जब कम होता है तो थॉट स्पीड अपने आप कम हो जाती है, थॉट आते ही नहीं है, थॉट में नए थॉट्स नहीं आएंगे आपको। इसलिए जब लाइट डिटेक्टर मशीन होती है ना,
हाँ जी,
उसमें ऐसे ही करते हैं कि पेशेंट उसको ना इंजेक्शन देके इंसुलिन का, उसको हम क्या करते हैं, अब उसका ब्रेन एकदम कर देते हैं, सेट कर देते हैं, EEG लगा देते हैं, और फिर उसको बोलने को कहते हैं, और वो कुछ गलत सोच ही नहीं सकता है।
ओके,
जो रियल हो गया तो बोलेगा नहीं, फिर बोलेगा तो वो सच एक दो शब्द ही बोलेगा,
उसी से सब वो पकड़ सकते हैं।
तो मतलब ये सिस्टम, जैसे हठ योग जो हमारे हठ योगी थे, हमारे जो पहले दूसरे ऋषि मुनि होते थे, वो ये करते, खाना पीना कम कर देते थे
जी,
खाना पीना खाते नहीं थे, अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट को बहुत स्लो कर देते थे, शुगर लेवल बहुत लो कर देते थे, और उससे उनका थॉट प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता था
जी।
उसी को वो कहते थे कि हमने निसंकल्प स्थिति आ गई। वो निसंकल्प स्थिति नहीं थी, किंतु थॉट बहुत स्लो हो जाते थे।
और बहुत सारे मैंने देखा ऐसे हाँ। भी होते हैं जो कि जो कुछ नशे का प्रयोग करके भी
हाँ,
उसको कम कर
सकते हैं, जैसे बार्बिट्यूरेट लेते हैं, कई लोग बार्बिट्यूरेट फिनोबार्बिटन लेते हैं, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं ब्रेन रिदम को स्लो कर देते हैं, बट दैट उससे काउंटर प्रोडक्टिव होती है वो चीजें।
ओके,
जैसे उसके लेवल लो जाएगा फिर एकदम बहुत फास्ट 40 हो जाएगी
जी,
दो से सीधे 40 हो जाएगी,
40 आएगी और वो बिल्कुल हानिकारक,
फिर एकदम आदमी इरिटेट, इतना इरिटेबल अनकंट्रोलेबल हो जाएगा
जी। इसीलिए कई बार ऐसे योग हठ योग में बड़ा गुस्सा होता
हाँ,
हाँ। है तो है तो देखो फिर वो ऐसे उबलते हैं जैसे।
तो ये जो है साइंस जो है इस तरह से इसको इंटरप्रेट करती है कि हमारे जो विचारों के, मेडिटेशन क्या है, योग क्या है, योग वो क्रिया है, वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने ब्रेन को, जैसे उषा दीदी ने कहा, उसको हम चैनलाइज कर रहे हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग है ना, हम सत्य संकल्पों को अंदर प्रवाहित कर रहे हैं
जी,
कॉन्शियस ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने माइंड को कि तुम ये हो है ना, मैं ये सत्य, मैं सत्य में मैं ये हूं, उसकी संतान हूं, उससे मेरा संबंध है, और संसार में जो कुछ चल रहा है, जो भी एक्टर्स हैं इस ड्रामा में, वो एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं एज पर कार्मिक अकाउंट्स।
तो अर्थ ये हुआ कि योग और ज्ञान ही सही विधि है।
सही विधि
जी। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हमारे विचार बहुत तेज चलते हैं, आज के स्ट्रेस के दौर में ज्यादातर लोगों के विचार जो है काफी तेज चलते हैं, तो योग की कुछ ऐसी क्रियाएं हम आपसे जानना चाहेंगे जो हमारे विचार शांत भी हों, योगा आपसे कैसे होते हैं, और हम थोड़ा एनर्जेटिक महसूस करें अगर करना चाहते हैं, हमारे में ऊर्जा थोड़ी हम महसूस करें, थकावट ना हो, हम काम करते करते हमारे को थकावट हो रही, तो कैसे हम उससे अपने आप को चार्ज कर सकते हैं वापस।
जो एनर्जी लेवल है, जैसा महर्षि पतंजलि ने पहले एक्सप्लेन किया कि योग के जो पार्ट हैं उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ दो पार्ट जो हैं, आसन और प्राणायाम, वो हमारे शरीर से रिलेटेड है, फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड है, लेकिन बाकी जो भी पार्ट है, यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, वो सभी हमारी ब्रेन की एनर्जी से ही रिलेटेड है। तो आप देखेंगे कि कुछ क्रियाएं जैसे त्राटक का अभ्यास योगी लोग किया करते थे, त्राटक था कि किसी एक पॉइंट पर अपने माइंड को कंसंट्रेट करने की कोशिश करनी है, वो अभ्यास करते थे कि आंखें खुली रहेंगी और एक ही पॉइंट पर लगातार देखना है, तो होता क्या था धीरे धीरे कि एक ब्लैक पॉइंट बनाकर उस पर लगातार वो देखते थे और कोशिश करते थे कि मन उनका एकाग्र होकर उस पॉइंट पर स्थिर हो पाए, क्योंकि मन को एकाग्र करने के लिए बहुत ज्यादा साधन योगियों के पास या उपलब्ध नहीं थे। इस तरह से सिर्फ त्राटक का अभ्यास या दीपक के ऊपर वो अभ्यास करते थे, जहां मन को कंट्रोल करने का अभ्यास किया जाता था, और धीरे धीरे देखा जाता था कि जो ब्लैक पॉइंट है, जहां तक मैंने उसको 15 और 20 मिनट तक अपने ट्रेनिंग के टाइम में और अपने अभ्यास में उसका प्रयोग किया, तो जो ब्लैक पॉइंट था वहां से धीरे धीरे एनर्जी वापस एमिट होके अपनी तरफ आनी शुरू होती थी, और कंसंट्रेशन इतनी एकाग्र होती थी कि उस टाइम मैंने ग्रेजुएशन तक संस्कृत नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब ट्रेनिंग के दौरान संस्कृत के श्लोक याद करने पड़ते थे तो बड़ा जल्दी से मैं उनको लर्न कर पाता था, बड़ी जल्दी से उनको याद कर पाता था। तो त्राटक जैसी क्रियाएं कर सकते हैं एनर्जी के लिए, एकाग्रता के लिए। और दूसरा, जो कुछ सूक्ष्म क्रियाएं होती थी, जैसे सूत्र नीति और जल नीति होती है, जो हमारे दोनों स्वर को खोल के रखती है, वो चीजें भी हमारे ब्रेन के सेल्स को शार्प करने में मदद करती है, क्योंकि जितना हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिव होते हैं उतना ही एनर्जी हमारे शरीर में हम ज्यादा यूज कर पाते हैं। ब्रीदिंग का जैसे मैंने कहा था कि सांस लेने और छोड़ने वाली क्रियाएं थी, जहां ब्रेन के ऊपर, ब्रेन सेल्स के ऊपर एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा था कि जैसे सांस लिया और गहरा सांस लेके वापस छोड़ा, ब्रीदिंग को फील किया, जो ब्रेन का हमारा पार्ट है सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला, तो जो सेंटर पार्ट है ब्रेन का, वहां तक हमने ब्रीदिंग को कोशिश करके कंज्यूम करने की कोशिश किया, तो वहां से जो ब्रेन सेल्स हैं उनका एक्टिवेशन बढ़ाने में ब्रीदिंग हमारी मदद करती है, क्योंकि जो ब्रीदिंग का कंबाइंड हीट है वो वहां तक टच करता है और उसके इफेक्ट से ब्रेन सेल्स की एक्टिवेशन बढ़ती है। और अब देखेंगे कि सारा दिन में जो ब्रेन है हमारा, हम अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो भी जो ब्रेन सेल्स के जो इंपल्सिस हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस हैं, वो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। और आजकल जैसा कि नेगेटिव थॉट्स और जैसा समाज का वातावरण बनता जा रहा है, उस वजह से हमारी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, उस वजह से व्यक्ति अपने को थका हुआ, अपने को कमजोर महसूस करता है। लेकिन योगिक क्रियाएं अगर करता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर करता है, त्राटक जैसी क्रियाएं अगर करता है, कुछ सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक व्यायाम का अभ्यास करता है, तो यकीनन वो अपनी एनर्जी को बढ़ा सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। दीदी जी, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। हम मन को ब्लैंक करने की बात पर आपने बहुत अच्छा हमें बताया। कई लोग कहते हैं जी योग का मतलब है कि भगवान को सब सरेंडर कर दो, जो हो रहा बस होने दीजिए। इसका सही तरीका क्या है, इसका क्या मतलब है इस बात का?
सरेंडर करने का मतलब ये नहीं कि जो हो रहा है वो होने दो और बस आपको कोई मतलब नहीं है, इस तरह का नहीं। लेकिन हमारे अंदर अगर अच्छे विचार है तो अच्छे विचारों को हम ईश्वर को अर्पित करते हैं, है ना। मान लो कि बीच में कोई बुरे विचार भी आ गए तो कोई हर्जा नहीं, वो भी अर्पित कर दो। इसीलिए भक्ति में बहुत सुंदर एक बात देखने को मिलती है कि शिव जी के मंदिर में जब जाते हैं ना तो अख के फूल चढ़ाते हैं, कि जो हमारे अंदर का पॉइजन है
जी,
वो पॉइजन भी मेडिटेशन करते हैं। तो ये नहीं कि बुरे विचार आएंगे ही नहीं, भाई इतने सालों से, इतने जन्मों से आत्मा को आदत पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो विचारों को भी हमने अंदर में समा के रखे हैं। लेकिन उन विचारों को अगर वो उभरते हैं तो कॉन्शियस नहीं हो जाओ कि मेरा मेडिटेशन तो कभी होगा नहीं, ये नहीं, वो बुरे विचार को भी परमात्मा को अर्पित कर दो,
तो ये आपको हल्का करता होगा। हाँ, और वो गिल्टी फीलिंग से भी थोड़ा मुक्त
कर देता है और उससे खुद रिलैक्स हो जाते हैं। जब वो अख के फूल हमने शिव जी को चढ़ा दिए
जी,
समर्पित कर दिए, उसके बाद पुनः अपने विचारों को एक दिशा दे, तो ये समर्पण का भाव है।
डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, आप योगी जीवन जीते हैं, डॉक्टर भी हैं, आप इस बात को किस तरह से लेते हैं, समर्पण को, सरेंडर को, कि जो है भगवान को समर्पित कर दीजिए?
देखिए, बेसिकली बात है विचारों की
जी।
हमारे विचार कहां से ओरिजिन होते हैं? या तो बॉडी के बारे में विचार चलते हैं, या तो हमारा जो पुराना रिकॉर्ड हो चुका है, कुछ हमने कर्म किए हैं जो रिकॉर्ड स्मृति के रूप में रिकॉर्ड हो चुके हैं, उसके अनुसार हमारी वृत्ति, भावना और संकल्प चलते, उसी अनुसार संकल्प चलते हैं। या धन
जी,
जो हमारी प्रॉपर्टी है, मकान जायदाद है, पैसा है, चीजें हैं, उसके विचार चलते हैं। तो भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि बच्चे जिसके कारण तुम्हारे विचार बहुत तेज चलते हैं तो मुझे दे दो,
ओके,
समर्पण कर दो, तन मन धन मेरे हवाले कर दो,
है
ना। तन मन धन सबके दे दिया, सब कुछ है जो से तेरा, अब दे दिया हमने, मन से दे दिया उनको, समर्पण कर दिया। अब वो कहता है मुझे इसका कुछ करना नहीं है, अब मैं जो कहता हूं उसके अनुसार इस तन को चलाओ, मन को वैसे ही विचार करो जो मैं कहता हूं। जब मेरे मन ये बाबा का, परमात्मा का है, तो मैं जो वो कहे वो उसके अनुसार मैं संकल्प चलाता हूं
जी,
पुराने को डिलीट कर देता हूं, धन को भी जैसे वो कहे। धन खाली पैसे की बात नहीं है, समय सबसे बड़ा धन है, संकल्प धन है, श्वास हमारा धन है, है? तो ये जो समय, संकल्प, श्वास और स्थूल धन भी जो होता है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, चीजें हैं, वो भी हम उसकी श्रीमत पे चलाते हैं। तो इसलिए योगी जीवन में इसका बड़ा महत्व है, अपने तन मन धन को हम परमात्मा के हवाले कर देते हैं और परमात्मा की श्रीमत के अनुसार, फिर डायरेक्शन के अनुसार फिर हम इसको लगाते हैं,
मतलब
तो ऑटोमेटिक हमारे विचार कम हो जाते हैं। हमारे विचारों की स्पीड कम करना ही योग है, तो ऑटोमेटिक हमारे पॉजिटिव की तरफ चलेंगे ना फिर।
तो भावना बदली जैसे ही अपने तन के लिए, अपने
मन के लिए, धन के लिए,
धन के लिए, अपने और चीजों के लिए, तो उसका जो असर है वो भी बदल जाता है। आप स्वस्थ असर आपके जीवन पे आता है, जो आपको अस्वस्थ असर दे रहा था, आपको तंग कर रहा,
लाइट महसूस करेंगे,
बिल्कुल हल्कापन देगा वो। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आइए एक क्लिप देखते हैं और योग का कुछ और अनुभव करते हैं।
राजयोग का अभ्यास मैं स्वयं अपने जीवन में बाल्यकाल, छोटी आयु से ही करती आई हूँ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रेगुलर आते रहे और वह साथ में मुझे भी कभी कभी लाते थे। तो पढ़ते समय स्कूल के आयु में ही हमने इसका अभ्यास सीखा और मुझे ऐसे लगता था जैसे कि मैं एक आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। ये कितना अच्छा सुखदाई संबंध है। अविनाशी संबंध है। छोटी आयु में मुझे महसूसता बहुत अच्छी, एक दिल को छूने वाली और बहुत स्नेह और शांति वाली महसूस होती रही। और धीरे धीरे जब यह अभ्यास बढ़ता गया तो स्वयं में मैंने कई शक्तियों का भी अनुभव किया कि कितनी एकाग्रता, कितनी पवित्रता और कितनी शक्ति मुझ आत्मा में भर रही है। और मैं ये अनुभव करती हूँ वर्तमान समय कि हमारे पास आने वाले भिन्न भिन्न प्रोफेशन से, परिवारों से जब आते हैं और राजयोग की शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसका अभ्यास करते हैं तो उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाता है। बल्कि वर्तमान समय तो हमने ऐसा भी देखा है कि अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए लोग, चाहे डॉक्टर्स भी उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो राजयोग आपको बहुत सहयोग देगा। कई डिप्रेशन के पेशेंट्स भी आते हैं और जब वो राजयोग का अभ्यास करते हैं तो उन्हें जीवन में एक शक्ति का अनुभव होता है और जीवन में एक उमंग उत्साह आ जाता है और जीवन जीने की कला भी सीख जाते हैं। और सभी प्रोफेशंस में आने वाले वो समझ जाते हैं कि हमें अपने प्रोफेशन में कैसे इस राजयोग का अभ्यास अप्लाई करना है ताकि हमारी मन की शक्ति बढ़ जाए, क्योंकि राजयोग मन को शक्ति प्रदान करता है, खुशी प्रदान करता है। इसमें हमारा संबंध मन बुद्धि का परमपिता परमात्मा से होता है और परमात्मा सर्व प्राप्तियों के भंडार सागर हैं, सुख के सागर, शांति, आनंद, प्रेम के सागर हैं। आत्मा वो ग्रहण करने लगती है और सच पूछिए तो आज जीवन में और मानव को क्या चाहिए, यही चाहिए। वो समझता है मैं सफलता की सीढ़ियों पे आगे चलता चलूं, लेकिन सफलता प्राप्त करने का जो आधार है वो वास्तव में हमारी मानसिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, संस्कारों की श्रेष्ठता है और वो सब हमें राजयोग से हासिल होती है। ऐसे अनेकों के हम परिवारों को भी देखते हुए महसूस करते हैं कि जिन परिवारों में आपस में संबंध भी अच्छे नहीं थे, घर में छोटी छोटी बात पर अशांति हो जाती थी, सब कुछ होते हुए, सब साधन होते हुए और अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हुए, पर कैसे उन्होंने राजयोग के अभ्यास से अपने जीवन में वो परिवर्तन लाया, संबंध अच्छे बन गए और शिक्षा ग्रहण करते हुए, व्यवसाय करते हुए, आपसी संबंधों में कैसे परिवार को सुखदायी बना के चलना है वो उनके जीवन में आता चला गया। कितने ना ऐसे एग्जाम्पल आपको सुनाऊं। अन्य प्रोफेशंस में भी हमने कई साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, जजिस आदि के भी एक्सपीरियंस हम सुनते हैं क्योंकि हमारे पास रेगुलर आते रहते हैं, तो वो बताते हैं कि हमने अपने प्रोफेशन में राजयोग से जजमेंट पावर महसूस की है और जिसकी हमें बड़ी जरूरत थी, क्योंकि माइंड कंफ्यूज हो जाता है। आजकल बातें ऐसी सबके सामने आती हैं कि मनुष्य जल्दी डिस्टर्ब होता है, कंफ्यूज होता है और वो निर्णय नहीं ले पाता कि मुझे क्या करना है, यहाँ तक कि ये भी नहीं सोच पाते कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। कभी कभी तो हमारे पास आकर ऐसा सुनाते, बहन जी ये हम कैसे समझे राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो वो जब राजयोग का अभ्यास करते हैं और यहाँ की ईश्वरीय नॉलेज को समझते हैं तो कहते हैं रियलाइज हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और एक जजमेंट पावर आ जाती है। तो ये राजयोग हमें सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन करने से उसके द्वारा हमारे जीवन में अनेक शक्तियां आ जाती हैं, विशेष रूप से एकाग्रता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति और जीवन बहुत सहज सुखदायी बन जाता है।
तो दोस्तों, आपने देखा इस योगी के क्लिप को और जाना कि योग किस तरह से हमारे जीवन को परिपूर्ण करता है। और आज के हमारे मेहमानों ने इतनी अच्छी तरह यह स्पष्ट किया है कि मन कैसे ब्लैंक नहीं होता, कैसे उसके विचार कम किए जा सकते हैं, यहाँ समर्पण का, सरेंडर का क्या महत्व है, कैसे वो आपके जीवन पर एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक प्रभाव डालता है। मैं अपने प्यारे मेहमानों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। योग रहस्य में आकर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह अपने बहुत ही गहरे ज्ञान को हमसे बांटा है और हमारे आपके जीवन को आसान करने का प्रयास किया है। राजयोगिनी उषा दीदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे डॉक्टर भ्राता सतीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। भ्राता दिनेश जी, दिल्ली से पधार कर आपने हमें इन क्रियाओं के बारे में बताया। दोस्तों, योग आपके लिए कुछ भी कर सकता है। योग के प्रयोग से आपके जीवन में एक बड़ा आनंदमय नृत्य होगा और योग आपको जो भी देगा वो अद्वितीय होगा। बस नई समझ से, नए ज्ञान से अपने पुराने स्वमान को नए स्वमान से खोना है, और श्रेष्ठ जो फल पाने के लिए, चाहे वो सफलता का है, समृद्धि का है, स्वास्थ्य का है, संतोष का है, आपको एक नया योग का बीज बोना है। आइए बढ़ते चलते हैं योग के शुद्ध संकल्पों के बीजों को लगाते हुए, और योग रहस्य में हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। दीजिए आज इजाजत। ओम शांति। नमस्कार।